पिछले 2 दिनों से हम लोग प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाएंगे। 7वां स्कंद अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 31 और 32। ब्राह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत्सन्न तार्यांग्री पितृवद्दीन वत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरु शीश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। आप में से कोई एक दोहरा है। प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हरेक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते, गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा धन सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज के गुणों को आगे आप कहेंगे। अब तक हम लोग कितने गुणों की चर्चा कर चुके हैं? हाँ, कौन कौन से हैं? पहला गुण वासुदेव भगवती यस्य नैसर्ग की रति ही। दूसरा नहीं महदुपासक। दूसरा है महदुपासक। तीसरा ब्राह्मण। चौथा शील संपन्न। और पांचवा सत्य संधो। तो छठा गुण उनका आगे वर्णन किया गया है, ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जीत लिया है इंद्रियों को। जब हम लोग किसी चीज को जीत लेते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? वो हमारे अधीन होती है, फिर जैसा हम कहते हैं वैसा वो करते हैं। जीतने का अर्थ उसे कहा जाता है। वश में करने का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो जैसा चाहे अपनी इंद्रियों से कार्य करा सके, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि लोग कहते हैं कि वो इंद्रियों को वश में रखते हैं, लेकिन जरा सा गला सूखने लगता है तो बीड़ी मांगते हैं कि लाओ जी बीड़ी पिलाओ। तो ये गोदास हैं, इंद्रियों के दास हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंद्रियों ने वश में कर रखा है। जिह्वा ने, कान ने, नाक ने, आँख ने, कर्मेंद्रियों ने, उन्होंने वश में कर रखा है। और इसीलिए उनके कारण, उनके वश के कारण वे लोग चल रहे हैं, इसलिए वे गोदास हैं। तो प्रहलाद महाराज कहेंगे, अदांत कह चुके हैं, अदांत गोभिर विशितम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। ऐसे लोग हैं वो बारंबार उसी में आनंद लेने का प्रयास करते हैं जिसमें बहुत बार आनंद ले चुके हैं, चबाया जा चुका है, बारम्बार उसी को चबा रहे हैं, कोई रस नहीं है उसमें। तो ऐसे जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का अर्थ है जो इंद्रियों को जीत ले, इंद्रियों को वश में करे। और इंद्रियों को वश में करने का सरल तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। इतिहास में दो उदाहरण हम देखते हैं, बड़े प्रसिद्ध उदाहरण। एक है विश्वामित्र मुनि और दूसरे हैं हरिदास ठाकुर। विश्वामित्र मुनि को भी अपनी इंद्रियों को वश में करना था और हरिदास ठाकुर को भी। विश्वामित्र मुनि ने अपने प्रयास से किया, एक योग क्रिया के द्वारा किया, कड़ी तपस्या करके किया, भगवान को दूर रख कर किया, भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाकर उन्हें वश में करने का प्रयास नहीं किया। विश्वामित्र बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे थे। हुआ यूं था कि विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि से, उस समय वो मुनि नहीं थे, विश्वामित्र राजा थे, तो राजा होकर वशिष्ठ मुनि के पास आए। वशिष्ठ मुनि ने बहुत कुछ उनका आदर सत्कार किया, इतना ही नहीं उनकी बहुत बड़ी सेना थी, पूरी सेना को बिठाकर खिलाया। जंगल में रहने वाला ये ऋषि मुनि छोटी सी कुटिया में रहने वाला, लेकिन जब विश्वामित्र आए राजा तो पहले वो अकेले गए। विश्वामित्र ने सोचा इनके यहाँ जा रहा हूँ, गरीब आदमी हैं, कहाँ मेरी सेना को खिलाएंगे, क्या करेंगे, तो अकेले चले गए। लेकिन जब वशिष्ठ मुनि ने पूछा आप अकेले कैसे, उन्होंने कहा नहीं सेना है, थोड़ा दूर खड़ी है। तो क्यों दूर खड़ी है, कहाँ यहाँ पर आएंगे तो कहाँ व्यवस्था होगी, वो क्या खाएंगे। अरे वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई चिंता नहीं, बुला लीजिए सबको। तो सारी सेना आ गई, बहुत बड़ी सेना थी, हजारों तो पुत्र थे केवल उनके, तो बाकी सेना तो सोच लीजिए कितनी होगी। तो वशिष्ठ मुनि ने सबको बिठाया और भोजन उनको कहा कि अब आप लोगों को जो भी चीज अच्छी लगती हो वो आप मन में सोच लीजिए। आप सोचिए आप लोगों को ये सुविधा दे दी जाए कि सुबह जब आप प्रसाद के लिए जाएं तो कुछ नहीं हो सामने और आपको कहा जाए कि बस अब आप सोचिए जो चाहिए। तो स्वाभाविक है सैनिक क्या क्या सोचने लगे होंगे, अब उसका वर्णन करने लगे तो फिर आप लोग फिर से किचन में चले जाएंगे तो वर्णन नहीं करेंगे। तो जिसको जो अच्छा लगता था उसने सोचा और आश्चर्य वही चीज़ उसके सामने, मतलब ऐसा नहीं था कि 1000 किलो राइस बना दिया सबको खिचड़ी खिला रहे हैं कि चलो सब आ गए हैं, ऐसा नहीं था। जिसको जो अच्छा लगता था वो उसके सामने आ रहा था, मतलब हर एक के सामने अलग अलग डिश थी। कोई पनीर खा रहा होगा, कोई पकौड़ा खा रहा होगा, कोई रसमलाई खा रहा, जो भी है। तो ये देखकर विश्वामित्र आश्चर्य हो गए कि मैं राजा होके ये नहीं कर पाता, और राजा होके कहाँ वो सैनिकों को ये सब खिलाते थे। तो सैनिकों के लिए सेम बनता होगा, जैसे लाइन से बन जाता है चलो दाल राइस खा लो या जो भी होता होगा, खैर। लेकिन यहाँ विश्वामित्र गरीब आदमी, जंगल में रहने वाला, छोटी सी कुटिया में रहने वाला, कोई राज्य का राजा नहीं, कुछ नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, कहाँ से इतना खिला दिया। तो विश्वामित्र ने कहा, पूछ लिया, आश्चर्य होगा भाई कहाँ से आया आपके पास ये सब इतना और ये कैसे। तो उन्होंने कहा मेरी गाय है नंदिनी, इसकी शक्ति है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। तो दूसरे शब्दों में वो कह रहे थे कि मेरी शक्ति तो अभी तुमने देखी नहीं है, ये तो मेरी गाय की शक्ति पहले देख लो, तो मुझसे ही आश्चर्यचकित हो रहे। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ठीक है, अगर ये गाय आपकी है, इसके अंदर इतनी शक्ति है, तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। तो खींच कर ले जाने लगे। अब विश्वामित्र मुनि कह रहे राजा है, विरोध नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत कर रहे हो आप, नहीं करो। लेकिन वो सुने नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी सबसे अच्छी चीज़ है वो राजा के लिए है, तो ये गाय यहाँ पर सबसे अच्छी ले जा रहा हूँ। तो गाय बोलने लगी वशिष्ठ महाराज को कि महाराज कुछ कीजिए, मैंने आपकी इतनी सेवा की है। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम ही अपनी रक्षा करो। तो उस समय उसने अपने शरीर से इतने सैनिक उत्पन्न कर दिए कि जितनी उसकी सेना थी सारों को मार डाला। अभी खिलाया था अभी खिलाया था जो चाहिए उनको, और फिर मार डाला उनको। तो देखिए कितना विचित्र बात है कि जहाँ जिस गाय ने बड़ी अच्छी तरह से जो चाहिए वो खिलाया हो, लेकिन वही गाय उनकी मृत्यु का कारण बनी। हम सब के लिए भी सीख है कि हमारे लिए एक ही चीज़ मुक्ति का कारण और एक ही चीज़ बंधन का कारण बनती है, एक ही चीज़ नाश का कारण और एक ही चीज़ प्रगति का कारण बनती है, केवल उसका उपयोग अगर सही हो। तो जिस तरह हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम इंद्रियों को जितेंद्रिय बनेंगे अर्थात सही रूप में कार्य करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तब फिर वही हमारी इंद्रियां, वही मन हमें भगवान की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हम उन्हीं इंद्रियों को, उसी मन को अपनी सेवा में लगाएंगे या अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे विश्वामित्र करना चाहते थे, अपने आनंद के लिए मैं लेकर जाऊंगा, तो वही नाश का कारण बनता है। इसीलिए हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे शत्रु भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो बहुत कोशिश की, हार गए, उसके बाद और युद्ध किया तो सब हार गए, सब मारे गए। विश्वामित्र मुनि को मारा नहीं, छोड़ दिया। तो विश्वामित्र चले गए राजा, उन्होंने कहा मैं तपस्या करूंगा, तपस्या के बल से आकर इनसे युद्ध करूंगा, क्योंकि ये सैनिकों की शक्ति तो कोई लाभ नहीं है, तो तपस्या की। और फिर आए लड़ने के लिए बड़ी तपस्या करके। तो उस समय फिर वशिष्ठ मुनि ने, उनके पास अपना एक दंड था, ब्रह्म दंड, सन्यासियों के पास या पहले ब्रह्मचारियों के पास भी हुआ करते थे, उनको दंड मिलता था। तो ब्रह्म दंड उन्होंने ऐसे ही खड़े हो गए अकेले, और इतनी शक्ति थी इनमें, अभी पूरी सेना लेकर आए थे, दूसरी सेना शक्ति, ऐसे ही हरा दिया वशिष्ठ मुनि ने। कुछ नहीं किया, बस खड़े रहे, हुंकार की, सब नाश। तो उस समय विश्वामित्र को लगा कि ये राजा बनने का क्या लाभ है, इससे तो ये ऋषि अच्छा है, मैं राजा हूं, इतनी सेना है, इतना कष्ट करके करके, ये तो ऐसे ही हुंकार मार के मुझे उड़ा दिया इसने। तो उस समय उन्होंने कहा मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है, बस अब मैं तपस्या करूंगा, ऋषि बनूंगा, ये राजा वाजा अब नहीं बनना। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक तपस्या करूंगा, जब तक ब्रह्म ऋषि के पद तक नहीं मिल जा। ब्रह्मा जी ने बीच में आकर उनको दिया कि ठीक है तुम राज ऋषि हो जाओ, राजा है, बोले नहीं मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना है, वशिष्ठ के जैसे बनना है। तो उस भाव में जब वो तपस्या करने लगे, तो अपने बल पर किसी गलत भाव से उन्होंने तपस्या की, इसीलिए अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाए। बड़ी कड़ी तपस्या, अकेले खड़े हैं जंगल में, हजारों वर्ष की तपस्या, और फिर इंद्र ने देख लिया। अब इंद्र का तो काम ही यही है, इंद्र देखते रहते, पता नहीं ऊपर बैठे क्या करते हैं, कैसे वो राज्य चलाते, देवताओं के राजा हैं, लेकिन ध्यान नीचे रहता है कि पृथ्वी पर कौन तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने देख लिया, तो अपने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को भेज दिया, मेनका। मेनका आई। अब देखिए, वो व्यक्ति जो हजारों वर्ष तपस्या कर रहा है, कितनी उसकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, लेकिन केवल एक घुंघरू की झनकार, छन छन छन, हरि बोल, समाप्त हो गई सारी तपस्या, साइड में रख दी, चलो मेनका को लेकर चले गए, विवाह कर लिया, आसक्त हो गए। फिर बहुत समय बाद उनको ध्यान में आया कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो तपस्या कर रहा था, ये कहाँ आ गया, ये सब महल वहल वापस। ये फिर मेनका को, फिर उनको पता चला ये इंद्र की चाल, इंद्र की चाल नहीं है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाए तो कोई क्या चाल चलेगी। चाल तो तब सफल होती है जब इंद्रियां वश में ना। और फिर दूसरी बार फिर से तपस्या की, मेनका को कहा चले जाओ, फिर तपस्या की, और इस बार रंभा को भेजा इंद्र ने। रंभा भी बहुत सुंदर है, दरअसल स्वर्ग की सारी ही अप्सराएं सुंदर हैं, ऐसा कहा जाता है एक जगह पर कि अगर स्वर्ग की जो दासियां हैं, मतलब जो जिनको दासी माना जाता है, ज़्यादा सुंदर नहीं रहती हैं, उनकी तुलना अगर आजकल के जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो भी हैं उनसे की जाए, तो स्वर्ग की दासियों के सामने यहाँ की सबसे सुंदर स्त्री, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, जो भी मिस हो, वो कॉकरोच के समान लगेगी, बस इतनी सुंदर उनकी दासियां हैं। तो फिर अप्सराओं का तो कहना क्या। खैर, आप लोग ये सब सुन के जाने का इच्छा मत कीजिएगा कि चलो हम लोग भी थोड़ा स्वर्ग में घूम कर आ जाए, ऐसे इसलिए नहीं, इसीलिए ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहे हैं उनकी सुंदरता का, स्वर्ग का इत्यादि, क्योंकि जिनकी सुंदरता के पीछे देवता तक गिर जाते हैं, ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े हजारों तपस्या, हजारों वर्ष तपस्या करके उनका पतन हो जाता, अगर आपको बताने लगेंगे तो अगले कल भागवतम में कोई बैठा नहीं होगा यहाँ पर, सब चले जाएंगे कर्म कांड करने के लिए कि चलो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो रंभा बहुत सुंदर थी, रंभा आ गई, लेकिन इस बार उन्होंने क्रोध कर दिया। तो काम क्रोध के वश में व्यक्ति रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। तो बहुत प्रयास करके बाद में फिर वशिष्ठ मुनि की कृपा से ब्रह्म ऋषि बने वो विश्वामित्र मुनि। उन्होंने नम्रता दिखलाई, जब तक अहंकार था उन्हें, उनकी तपस्या सफल नहीं हुई, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए, समर्पण कर दिया, नम्रता दिखलाई वशिष्ठ मुनि के सामने, तो उस समय फिर उनको वो पद प्राप्त हुआ। तो ये एक उदाहरण हमारे सामने है जहां व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करता है। दूसरी ओर एक उदाहरण है हरिदास ठाकुर का। कौन सी तपस्या की थी हरिदास ठाकुर ने, कहां एक पांव पर खड़े हुए थे? हरिदास ठाकुर केवल भगवान के नाम का जप करते थे, बस ये उनकी तपस्या थी। और कलयुग के लिए यही तपस्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सच्ची तपस्या है, यही समाधि है। हरिद्वार में एक मंदिर है जिसे भगवान के नाम का मंदिर माना जाता है, उसमें भगवान के नाम बहुत सारे लिखे, तो हरे कृष्ण हरे राम, ये वो नाम का ही मंदिर है वो पूरा। तो वो कैसे हुआ, काफी समय पहले वहां एक स्वामी जी रहा करते थे। वैसे तो वो ज्यादा बड़े भक्त नहीं थे, प्रचार गलत करते थे, लेकिन प्रसिद्ध बहुत थे। तो एक बार एक राजा ने उनके विषय में सुना और उनकी इच्छा हुई कि मैं स्वामी जी को समाधि में देखना चाहता हूं। तो उन्होंने संदेश भेजा, तो स्वामी जी ने कहा ठीक है इतनी तारीख को आ जाना। तो राजा गए, दो तीन दिन पहले ही चले गए। अब उनकी बड़ी इच्छा थी कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि समाधि में कैसे जाते हैं स्वामी जी, क्या समाधि है, क्योंकि समाधि 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 सुना था, अब देखा तो नहीं कि क्या होता है समाधि में। तो उन्होंने सोचा मैं राजा हूँ, मुझे तो पता चलना चाहिए कि समाधि क्या होती। तो वो आ गए, तो जिस दिन कहा था फिर उस दिन आ गए, उन्होंने बुलाया स्वामी जी ने। तो राजा बैठ गए, अब तैयार हो गए कि अब मैं समाधि देखूंगा। तो उन्होंने देखा कि वो खड़े हुए और इधर से उधर चलने लगे और महामंत्र का जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो राजा सोचे ठीक है ये समाधि के लिए वार्म अप कर रहे होंगे, वार्म अप होता ना कि कुछ बड़ा चीज़ करने के पहले थोड़ा तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये समाधि के पहले कुछ थोड़ा बहुत भजन इत्यादि करेंगे और फिर समाधि में जाएंगे। राजा बैठे रहे, बीच में एक दो बार पूछा स्वामी जी समाधि, स्वामी जी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, वो जपा कर रहे हैं। तो ऐसे वो करीब चार घंटे तक जपा करते रहे और फिर धीरे 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 उनका जपा इतना तीव्र हो गया, फिर वो ताली बजा बजा कर जोर जोर से कीर्तन करने लगे। राजा देख रहा है ये क्या हो रहा है, इसको कब समाधि में जाएगा। और फिर बहुत देर बहुत कीर्तन वीर्तन करके फिर एकदम शांत हो गए, बैठे और बहुत सारा पानी पीने लगे। तो अब राजा ने पूछ लिया स्वामी जी अब आप तैयार हैं समाधि में जाने के लिए? बोले तैयार क्या, मैं तो अभी समाधि से बाहर आया। बोले समाधि से बाहर आए तो बोले और क्या था, ये क्या देख रहे थे चार घंटे तक, तो वही तो समाधि है। ये जो समाधि करते हैं वो खुद बोलते हैं, ये जो समाधि है ये सब बेकार की समाधि है, ये असली समाधि है नाम की समाधि, भगवान के नाम को लेना, तुम कर सकते हो। उसने बोला ये नहीं होगा, ये काम करो जाकर लिख कर मुझे भेजो भगवान का नाम। तो राजा ने लिख कर भेजा और फिर आज भी वो ऋषिकेश में मंदिर है, तो नाम मंदिर वो बना वहाँ पर, कि फिर बहुत सारे लोगों ने लिख कर भेजा हरे कृष्ण हरे राम ये सब, तो आज भी वहाँ पर वो नाम मंदिर। तो ये सच्ची समाधि है। हम लोग सोचते हैं समाधि मतलब कोई जादू होगा, स्वामी जी के चेहरे से प्रकाश निकलेगा या वो हवा में उड़ जाएंगे, कुछ नहीं, सिंपल है हरे कृष्ण स्वामी जी ने कहा राजा को ये कर सकते हो, तो ये समाधि है, ये असली समाधि है। क्योंकि जितनी भी हम योग क्रिया करते हैं, वो योगी थे, तो उन्होंने कहा जितनी भी हम योग क्रिया करते हैं उसका उद्देश्य है ये, इसलिए ये सच्ची समाधि है। तो हरिदास ठाकुर कुछ नहीं करते थे, भगवान के नाम का जप लेते थे, अकेले गुफा में बैठे हैं। भेज दिया रामचंद्र खान ने एक वेश्या को, बहुत सुंदर वेश्या, रात के समय अंधेरे में कोई नहीं, अकेले हैं और इतनी सुंदर वेश्या आती है, हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं। देखिए विश्वामित्र के सामने भी आई थी मेनका, ऐसा वर्णन नहीं है कि वो रात में आई थी, लेकिन यहाँ तो रात में आए हैं, अंधेरे में कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, हरिदास ठाकुर बैठे जप कर रहे हैं। वेश्या ने आकर प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि आप कितने सुंदर हैं, इतने युवक हैं आप, इतने सुंदर हैं, आपकी बाहें देखिए, मतलब गुणगान करने लगे हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं। वैसे ये आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक अकेला युवक, अविवाहित युवक जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो बैठा हुआ है ब्रह्मचारी अकेले कहीं पर, और कोई अकेले में एक स्त्री आकर उसको कह रही है कितना सुंदर है ये, कितनी शक्ति है। और उतना ही नहीं, फिर उसने कहा मैं आपके साथ संग करना चाहती। हरिदास ठाकुर जब कर रहे थे, हरिदास ठाकुर ने थोड़ा सा रुके, हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन थोड़ा समय रुको, मैंने एक प्रण लिया है कि मैं इतने नाम भगवान के लूंगा, बस ये खत्म होते ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, बैठ गए। अब रात भर बैठी रही हरिदास ठाकुर, रात भर जप करते रहे समाधि रात भर जप कर रहे। अब वो बैठे बैठे थक गई, उसको तो कोई रुचि नहीं है ये नाम सुनने में। तो खैर सुबह हो गई, हरिदास ठाकुर ने कहा क्षमा करना, आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, अब तो सुबह हो गई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आज रात को फिर आऊंगी। ठीक है, चली गई। अगली रात फिर आए हरिदास ठाकुर, फिर बैठे। देखिए हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी हंसी आती है, लेकिन आप हरिदास ठाकुर या हरिदास ठाकुर को हटाकर वहाँ पर एक युवक को बिठाइए, उसके लिए कितना कठिन है कि एक सुंदर स्त्री रात के समय आकर तैयार है और कोई देखने वाला नहीं है, जंगल है। तो फिर उस समय फिर आ गई हरिदास ठाकुर, बस थोड़ा सर को जब पूरा करता हूँ। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो जब तीन रातों तक हरिदास ठाकुर के मुख से जो भगवान का नाम सुन ले, उसका तो उद्धार निश्चित है, उसके उद्धार को कौन रोक सकता। तो तीसरे दिन सुबह, जब तीसरी रात हो गई, अगले दिन सुबह वेश्या ने समर्पण कर दिया। उसने कहा मैं तो आपका आपका मान भंग करने आई थी, मैं तो आपको बदनाम करने के लिए आई थी, मुझे भेजा था रामचंद्र खान ने, लेकिन मैं अभी क्षमा चाहती हूँ, आपकी शिष्या बनती। हरिदास ठाकुर ने कहा कि जानती हो मैं तीन दिन क्यों रुका यहाँ पे, मैं तो पहले दिन ही चला जाता। प्रश्न आता है ना कि अगर वेश्या ने कहा मैं रात को फिर आऊँगी, तो हरिदास ठाकुर बैठे के होते चले जाते वहाँ से। तो उन्होंने कहा मैं तो जानता था तुम किस लिए आई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारा उद्धार करना चाहता था, इसलिए मैं तीन दिन रुक गया। आज तुमने ये कहा है, ये पकड़ो माला और ये है तुलसी, जपा करो, अपना सब कुछ दान कर दो। तो वेश्या ने ऐसा ही किया। जो उसके पास ऐश्वर्यशाली कपड़े थे, धन था, हीरे थे, जवाहरात थे, सब दान कर दिए ब्राह्मणों में, अपना सर शेव कर लिया और बैठ गए वैराग्य और जप करने लगे। तो आप सोचिए क्या प्रभाव होगा उन शब्दों का। कुछ प्रचार नहीं किया हरिदास ठाकुर ने, कौन सा प्रचार किया, कहां उसको बोला तुम शरीर नहीं आत्मा हो, कोई प्रचार किया उसको, कोई प्रचार नहीं, केवल हरि नाम। और उनके हरि नाम में इतनी शुद्धता थी कि वो वेश्या बदल गई। तो ये उदाहरण है विश्वामित्र मुनि जो अपने बल पर, हरिदास ठाकुर केवल हरि नाम के द्वारा। तो अगर हमें जितेंद्रिय बनना है, तो हमें हरिदास ठाकुर के उदाहरण से सीखकर ऐसा जितेंद्रिय बनना चाहिए जिससे हम भगवान की सेवा में लगा सकें अपने आप को। तो सच्चा जितेंद्रिय वो है जैसे प्रहलाद महाराज, इन्होंने कौन सी तपस्या की, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की 36,000 वर्ष, अपनी इंद्रियों को वश में किया, प्रहलाद महाराज ने कौन सा किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज जितेंद्रिय हैं क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसीलिए भागवत में नल कुंवर और मणिग्रीव प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, जब कृष्ण उनको क्षमा कर दिया, दोनों प्रकट हुए कृष्ण के सामने दामोदर लीला में, तो कृष्ण ने उन कृष्ण से मांगना चाहते, कृष्ण का मांगो क्या चाहिए, कुछ वरदान मांगो, तो उन्होंने यही मांगा, वाणी गुणानुव कथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोने। हे कृष्ण, अगर हमें आशीर्वाद देना है तो इतना दीजिए कि हमारी वाणी आपका गुणगान करती रहे, बस जीवन ऐसे निकल जाए। ये सच्चा जीवन है, ये जितेंद्रिय है, जिसने अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा दिया, सतत उसकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलता है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, और हमारे कान सदैव आपकी कथा को सुनते रहे। इसीलिए कहा गया कि जो व्यक्ति अपने कानों को समुद्र की तरह बना देता है, जिसमें कृष्ण कथा की नदियां गिरती रहें, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ चकर्मसु, और हमारे जो हाथ हैं ये आपकी सेवा में लगें, हम आप अपने इस हाथों से आपका मंदिर मार्जन कर सकें, आपका श्रृंगार कर सकें, आपका हार बना सकें, भोग बना सकें। हम हस्तौ चकर्मसु, और मनः तव पाद योने, जो मन है वो आपके चरण कमलों में लगे, और शिरः सिर शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, क्षमा चाहते हैं। तो मेरा जो सिर है वो आपके बनाई हुई जितनी भी स्थिति है, ये सृष्टि है, उसमें हरेक को प्रणाम करें। तव निवास जगत प्रणामे, सारे जगत को हम प्रणाम कर सकें, ये जानते हुए कि हर चीज में आपका वास है। जब प्रणाम किया जाता है तो प्रणाम शरीर को नहीं किया जाता, प्रणाम इस शरीर में वास करने वाले परमात्मा को किया जाता है, ये जान लीजिए। इसलिए नियम है कि जब कोई प्रणाम करे तो उनको पुनः वापस प्रणाम किया जाता है, ये शास्त्र का नियम है। तो क्यों किया जाता है? उनके हृदय में विराजमान भगवान को, परमात्मा को प्रणाम किया जाता है, शरीर को नहीं। जैसे जब सती देवी ने शिव जी से पूछा था, हम लोग इस चर्चा को कर चुके हैं, कि क्यों आपने प्रणाम नहीं किया मेरे पिताजी को, अरे कर देते, क्या लाभ, क्या आपको तकलीफ थी, तो आपने क्यों प्रणाम नहीं किया? तो शिव जी कहते हैं, मैं प्रणाम नहीं करता शरीर को, और ये तो देहात्म बुद्धि में रहने वाला व्यक्ति, तो मैं शरीर को नहीं, मैं तो भगवान को प्रणाम करता हूँ जो शरीर के भीतर है। तो सही प्रणाम उनको किया जाता है। तो यही नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं कि हमें आप इतनी शक्ति दीजिए कि हम हर जगह पर आपके दर्शन करते हुए हर वस्तु को प्रणाम कर सकें। तव निवास जगत प्रणामे, और दृष्टि देखें क्या हम, दृष्टि सदा दर्शने तु भवत तनु नाम, हमारी दृष्टि सदैव आपके भक्तों की ओर रहे, हम आपके भक्तों का दर्शन कर सकें, बस इतनी हमें आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए, उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, सेवा मांगी, क्योंकि सेवा इन सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसी सेवा में लगकर हम जितेंद्रिय हो सकते हैं। सच्चा जितेंद्रिय वही है जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा, और कैसे लगा है, भगवान की योजना को जानकर, कि जो कुछ है भगवान की योजना है। श्रद्धा से, हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारा हर दिन भगवान निश्चय करेंगे हमें क्या करना है, ये समर्पण है। समर्पण केवल बाहरी दिखावा नहीं, समर्पण केवल घर त्याग देना नहीं, समर्पण क्या है? समर्पण ये है कि हर समय हर क्षण ये जानना कि भगवान की योजना जो भी है उसको मैं स्वीकार करता हूं। अपने जीवन के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना। जैसे एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मुझे कैसे पता चले कि भगवान ने मेरे लिए क्या योजना बनाई हुई है भविष्य की। भगवान ने कुछ तो बनाई होगी, भक्त था इसीलिए इतना मालूम था, तो क्या योजना बनाई है मुझे कैसे पता चलेगा, बताइए। तो वे लोग उस समय बगीचे से जा रहे थे, बगीचे में एक फूल की कली थी, गुलाब के फूल की कली, तो उन्होंने वो कली तोड़ी और उसको हाथ में दी। उन्होंने कहा, एक काम करो, ये जो कली है, जो बंद है, इसको खोलो, फूल बनाओ पूरा, लेकिन एक भी पंखुड़ी टूटनी नहीं चाहिए, बिना तोड़े ठीक से बनाओ। शिष्य ने देखा, है तो संभव ही नहीं, कली बंद है, आप भी उसको खोलने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा, खुलेगी कहाँ से कली। तो उन्होंने कहा कि ट्राई, प्रयास करो। उसने कहा, हो ही नहीं, फिर भी गुरु ने कहा इसलिए प्रयास किया, लेकिन कहाँ, खोलने गया सब टूट गया। तो गुरु ने समझाया कि देखो, यही कली अपने आप खुल जाती है ना, सुबह होती है, जब समय आता है इसका फूल बनने का तो कली खुल जाती। कौन खोलता है? भगवान खोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तुम एक छोटी सी कली फूल की तो खोल नहीं सकते हो, अपने जीवन को खोलना चाहते हो कि क्या हुआ आगे, क्या होने वाला है, भगवान पर छोड़ दो। ये सच्चा समर्पण है कि भगवान ने कोई ना कोई योजना कर रखी है, जो योजना है वो ठीक है। हर रोज हर क्षण हमें समर्पण करना है इस भाव में कि जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की योजना है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। इसे समर्पण कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय हो सकता, अन्यथा इंद्रियां बहुत कष्ट देती हैं। अगर उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इंद्रियां इतना कष्ट देती हैं। मान लीजिए आप में से तो कई लोग गृहस्थ हैं, आप जानते हैं कि पत्नी के साथ जब रहते हैं तो क्या क्या होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 10 पत्नियां हैं, आप लोग तो ये सोचकर ही, हमें पता है जो गृहस्थ हैं वो तो सोचेंगे कि हाँ प्रभु जी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक भी है बहुत है। तो खैर जिसकी 10 पत्नियां हों, अब वो बेचारा थका मांदा काम करके घर पे वापस आ रहा है, घर पे 10 पत्नियां रेडी खड़ी हैं, तो जैसे ही घुसा एक ने हाथ खींचा, मेरा कंगन किधर है कहा था लेकर आने को, दूसरी ने दूसरा हाथ खींचा, हार किधर है, तीसरी गला पकड़ रही है कोई किधर से, अब वो बेचारा क्या करेगा, चारों तरफ से खींचा जा रहा है। आनंद आएगा 10 पत्नियां रखने का? क्या क्या आनंद आएगा, उससे अच्छा तो वो कहेगा मर जाऊं अच्छा है, मृत्यु ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे ही हम सब की 10 पत्नियां हैं, ब्रह्मचारियों की भी हैं, 10 इंद्रियां, क्षमा कीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे ये क्या चल रहा है, ब्रह्मचारी तो हमने सोचा था नहीं करते, तो 10 पत्नियां हम सब की हैं और हम सब उनसे आसक्त हैं और इंद्रियां खींचती हैं हमें हर समय। कभी आंखें खींचती हैं कुछ सुंदर रूप देखने के लिए, कान खींचती हैं कुछ सुंदर सुनने या बहुत मधुर सुनने के लिए, त्वचा खींचती है कुछ स्पर्श करने के लिए, नसिका खींचती है कुछ सूंघने के लिए, हर इंद्रिय खींच रही है हमें। ये उसके लक्षण हैं जो जितेंद्रिय नहीं है। लेकिन जो जितेंद्रिय है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, केवल इसके द्वारा। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। और उसके लक्षण क्या हैं? शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। शीत उष्ण, ठंडी में गर्मी में, शीतोष्ण सुख दुखेशु, सुख में दुख में, तथा मान अपमान यो, मान में अपमान में वो समान रहता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो विचलित नहीं होता भक्ति से, उसको प्रशांत या जितात्मना कहा गया, वो सदैव समान रहता। तो इसलिए ऐसे भक्त थे प्रहलाद महाराज जो जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, जितात्मनः प्रशांतस्य। और फिर आगे उनके गुणों का वर्णन है। आगे कौन सा गुण दिया गया है पढ़िए इसमें। आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमा, अर्थात सारे जीवों के लिए आत्मवत, मतलब आत्मा यहाँ पर परमात्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे परमात्मा हमारे सुहृद हैं, उनके समान सुहृद थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है, परमात्मा के समान सुहृद प्रहलाद महाराज को कहा गया है, क्योंकि परमात्मा की तरह तो कोई सुहृद हो ही नहीं सकता। परमात्मा हमारे साथ हर समय हैं, हर योनि में हैं, हमें हमेशा मार्ग निर्देशन दे रहे हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। हम उनकी ओर नहीं देख रहे हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ते। ये सच्चा मित्र है। हमने तो उनको त्याग दिया, भगवान को छोड़ दिया, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते और कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहावत है कि जो भी भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। आपने वो कहानी सुनी है ना राजा और मंत्री की। मंत्री हमेशा कहता था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और राजा को बड़ा गुस्सा आता था। तो एक दिन राजा की उंगली कट गई, राजा उंगली कटते हुए मंत्री ने देखा, मंत्री ने भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया, अरे किसी की उंगली कट जाए और तुम बोलो कि भगवान बहुत अच्छा। आप सोचिए कि अभी आप कहीं पर खड़े हैं कि अचानक किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए, उसका हाथ कट जाए या कुछ हो जाए, और आप बोले भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, वो व्यक्ति तो आपको बंदूक की गोली मार देगा। कभी कभी लेकिन हम लोग बोलने में ऐसा करते हैं, आदत हो गई है हम लोगों को अच्छा बोलने की। वैसे ये कभी कोई आकर बोलता, अरे तुम्हें मालूम है उसका एक्सीडेंट हो गया, बोलते अच्छा अच्छा क्या है उसमें एक्सीडेंट हो गया ना, तो हमें अच्छा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं बोलते अच्छा, ऐसे वो अलग भाव से बोलते हैं लेकिन मुख से अच्छा ही निकलता। हाँ वो एकदम मरने वाला है, अच्छा वो अच्छा क्या है उसमें मरने वाला है। तो खैर हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, बाहर क्यों चले गए हम लोग अच्छे से। हाँ उंगली कट गई, हाँ उंगली कट गई। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, वो भगवान ने अच्छा किया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, राजा ने कहा उठा के इसको जेल में डाल दो, मेरी उंगली कट गई। और बोल तो जेल में डाला तो भी बोला भगवान ने बहुत अच्छा किया, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो राजा ने कहा तुम्हें तो पता चलेगा, जेल में रहो, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो अगले दिन राजा चले गए शिकार खेलने के लिए, खेलते खेलते कहीं भटक गए, अकेले हो गए, आदिवासियों ने पकड़ लिया, क्योंकि आदिवासी किसी की बलि देना चाहते थे, उनको कोई मिल नहीं रहा था, अचानक राजा मिला, पकड़ लिया, उनको क्या पता राजा है, पकड़ लिया। और राजा कह रहा, अरे मैं राजा हूँ राजा, बोले सब लोग कहते मरने के पहले आजा। तो ले गया पकड़ के, बांध दिया, अब बड़ी सी वो फरसा कुल्हाड़ी, अब उसका गला काटना है। राजा का ऐसे रखा हुआ, तो ऐसे दोनों हाथ रखे हुए ऐसे गला के, बस काटने के लिए आ रहे हैं। तो काटने ही जा रहे थे कि जो सरदार थे उनके आदिवासियों के, उन्होंने बोला ए रुक जाओ रुक जाओ। बोला क्या हुआ? बोले जब भगवान को बलि दी जाती, मतलब उनके भगवान, उनकी देवी को, भगवान को तो नहीं दी जाती, तो जब देवी को बलि दी जाती है तो पूर्ण होना चाहिए, ये व्यक्ति अपूर्ण है, इसकी उंगली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं हो सकती, छोड़ दो इसको, दूसरे को पकड़ के लेकर आ। तो उन्होंने उठा के फेंक दिया उसको, चलो जाओ दूसरे को लेकर आए। तो राजा को तो बड़ी प्रसन्न, अच्छा हुआ मेरी उंगली कटी। उंगली नहीं कटी होती तो आज सर कट जाता। तो राजा गए वापस, तुरंत बोला उसको छोड़ दो, मंत्री ने जो कहा था सही था, छोड़ो उसको तुरंत। तो मंत्री आए बाहर, तो राजा ने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले मैंने तो कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी उंगली कटी ये समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें जेल में रहना पड़ा 2 दिन 3 दिन, वो भगवान ने क्या अच्छा किया? उसने कहा महाराज जहां भी आप जाते मैं आपके साथ जाता हूं, अगर मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ होता, आपकी तो उंगली कटी थी, मैं तो पूरा था ना, मेरा गला कट जाता आज। तो भगवान जो करते अच्छा करते, राजा जी का सही है। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसे हमें आत्मवत, भगवान हमारे लिए कभी बुरा कर ही नहीं, तो परमात्मा कभी बुरा नहीं करते, ये तो हम लोग हैं जो इस जगत में आकर आवरण डाल लेते हैं। और जब बताया भी जाता है, परमात्मा हृदय से बताते हैं। आप सोचिए कभी भी जब आप गलत काम करने जाते हैं, क्या आपके हृदय में ये बात नहीं आती है, थोड़ा डर नहीं आता है? एक बार निश्चित आता है ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा डर आता है, या एक आवाज आती है कि नहीं ये गलत है, कल को कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन क्योंकि हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भौतिकता में पड़े हैं, हम सुनते नहीं, परमात्मा बताते हैं लेकिन हम इतने आसक्त हैं कि हम सुनते नहीं। इसीलिए ये कोई नहीं कह सकता, कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा हृदय में है तो गलत काम क्यों करने देते हैं जीव को, वो मना करते हैं। अब सुनता नहीं जीव तो क्या करे, फिर सब कष्ट लेना पड़ता है ना। हाँ भगवान नहीं बताएं तो अलग बात है, भगवान बताते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था जो सुअर पाला करता था। अब सुअर पालेगा तो उसको खिलाएगा क्या? सुअरों को तो कोई वो राइस दाल में आनंद ही नहीं आता है, सुअरों को तो अपना अलग ऐश्वर्यशाली भोजन है। तो वो बहुत पालता था, तो उसकी इच्छा थी कि थोड़ा कम खर्चा करूं इनके ऊपर और पैसे ज़्यादा मिले, क्योंकि पाल कर बेचता था सुअरों को। तो एक दिन ऐसे ही नगर गांव के बाहर गया तो देखा कि गांव के बाहर एक स्थान था जहां पर लोग सुबह सुबह उसकी उपजाऊ बढ़ाने के लिए उसको कुछ किया करते थे वहां पर, कि ताकि वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाए। तो सब पड़ा हुआ था मल सब लोगों का। इसने सोचा कि ये बढ़िया है, अगर मैं ये सारा उठा कर ले जाऊँ तो अपने सुअरों को डालूंगा, वो खाएंगे, मुझे कोई खर्चा नहीं होगा, और ऐसे मैं रोज करूंगा तो बेच दूंगा, मेरा खर्चा नहीं होगा। तो उसने एक टोकरी ली बड़ी सी और उसमें सब भर लिया। अब जा समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या भर लिया, ठीक है? तो उन्होंने सब भर लिया उसमें और सर पे रख के जाने लगे। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे गए गांव में तो बारिश शुरू हो गई। अब ये तो खुला हुआ था, प्लास्टिक से कवर तो किया नहीं था, तो बारिश शुरू हुई तो पानी के साथ साथ वो पूरा बहने लगा और उनके शरीर पर, मतलब वो क्या बोलते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाने लगा उनके शरीर की। तो धीरे धीरे ऐसे बहते, पहले सर पे, फिर मुंह पे, फिर हाथों पे, पाँव पे, पूरा शरीर। लेकिन वो रुके नहीं, क्यों? उसको तो था कि मैंने आज बहुत बड़ा काम किया, अब देखो मैं अपने सुअरों को मुफ्त में खिलाऊंगा और फिर उनको बेचूंगा। और ऊपर से सब गिर रहा है पूरा और बदबू आ रही है, और उसको बदबू नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि उसका मन तो आसक्त है उसमें कि सुअरों में, तो इसलिए उसको बदबू नहीं आ रही है। अब जब बारिश होने लगी तो थोड़े लोग सब साइड में खड़े हो गए पेड़ के नीचे, और उन्होंने देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है, और जा भी रहा था बड़ी प्रसन्नता से। तो बाकी सारा तो उसका ढक गया था, मुंह से स्माइल कर रहा था, इसलिए वो उतना दिखाई दे रहा था। तो लोगों ने देखा और लोगों ने उसको कहा, ये क्या कर रहे हो ये, तुम्हें अभी क्या क्या शब्द कहे होंगे, खैर हमें नहीं पता, लेकिन लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसको बंद करो, ये इतनी बदबू आ रही, तुम कैसे ऐसे रह सकते। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुनी, उसने सोचा कि ये सारे लोग मेरे विरोधी हैं, ये चाहते नहीं है कि मैं कमाई करूं, ना इसीलिए मना कर रहे हैं लोग, कह फेंको उसको, ये क्या लगा के बैठे। तो नहीं, ये सारे लोग मेरे विरोधी हैं, चाहते नहीं है कि मैं कमाई करूं, इसलिए बिना सुने, किसी की बिना सुने वो चले जा रहा था। तो पूरा मल में ऐसे हम लोग भी इसी तरह है, ये जो शरीर हमने लिया है ये और कुछ नहीं है, मल ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर को अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर डाल लेते हैं, ढक लेते हैं। अब शरीर तो है ही बदबू वाला, आप जानते हैं ना, आत्मा छोड़ दे तो क्या रहता है उसमें, बदबू आती है शरीर से, एक एक दिन रखा नहीं जा सकता। तो अब ऐसे शरीर को हम लोग लेकर चलते हैं और भगवान, भगवान के भक्त आकर कहते हैं, ए क्या कर रहे हो, क्यों इतना शरीर से आ सकते हो, छोड़ो इसे। लेकिन हमें क्या लगता है, ये मेरी प्रगति नहीं चाहता है ये नहीं चाहता है कि मैं खुशी रहूं, इसीलिए कह रहा है शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सिगरेट मत पियो, ये चाहता ही नहीं है कि मैं खुश रहूं, तो इसलिए इसकी नहीं सुनना। तो हम लोग उसी व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपने सारे शरीर पर मल को डाल लिया है और बस अब वो सोच रहा है कि, तो परमात्मा हर स्थान पर हर समय हमें ज्ञान देते हैं, चेतावनी देते हैं, गलत कर रहे हो, रुक जाओ, हम सुनते ही नहीं हैं। और क्योंकि परमात्मा कहते ठीक है तुम्हारी इच्छा, फिर कष्ट भोगो, तो उसको फिर कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसीलिए परमात्मा की तरह प्रहलाद महाराज आत्मवत सर्वभूतानाम, सभी जीवों के लिए बड़ी करुणा थी, मित्रता का भाव था, सुहृद थे, और उनको वो हमेशा इस तरह से। और एक ही ऐसा उदाहरण प्रहलाद, नारद मुनि कहते हैं ये प्रहलाद का इतना उदाहरण है, एक ही है कि इतना उसके अंदर करुणा थी, सुहृद था उन सबका। क्योंकि देखिए कैसे पता चलता है, असुरों को भी प्रचार कर रहा था अपने बालक मित्रों को, छोटा सा था लेकिन वहां से ही, क्यों? क्योंकि ये सच्ची मित्रता है, सच्ची मित्रता सुहृद का अर्थ होता है जो हृदय के बहुत निकट है, और हर जीव के भगवान ही हृदय के निकट है। और कौन हृदय के निकट है? ये तो लोग केवल कहते हैं इस जगत में, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, बड़ा निकट का मित्र है। क्या निकट का मित्र है? थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास तब तक निकट का मित्र है, पैसा खत्म हो गया वही आपको पत्थर मारेगा। जब तक उसको कुछ मिल रहा है आपसे वो आपका मित्र है, लेकिन भगवान देखिए ये सच्चे सुहृद हैं, ये कभी छोड़ते नहीं हैं। तो असली मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता है जो प्रहलाद ने दिखलाई, अपने मित्रों को ज्ञान दिया, भगवान का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, इस जगत में आसक्त नहीं किया। तो सच्ची मित्रता ये नहीं है कि हम मित्र के गलत कार्यों में उसका साथ दे, जैसे कर्ण ने दिया। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का गुणगान किया जाता है कि देखो कर्ण, अपनी मित्रता के चलते उसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, मतलब भाइयों के साथ नहीं गया, राज्य को नहीं लिया, कितना महान है। कोई महानता नहीं है, क्योंकि जब उसका मित्र गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, उसका साथ देना भगवान ने बताया उसे। जब कर्ण पूछने लगा मृत्यु के समय कि अर्जुन अधर्म कर रहे हो तुम, तो श्री कृष्ण ने पूछा कि कर्ण तब तुम्हारा धर्म कहां था जब तुम सहयोग कर रहे थे द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय? तुमने कहा था जब दुर्योधन ने कहा, तुमने कहा लेकर आओ उसको, तब तुम्हारा धर्म कहां था? तुमने हर चीज में साथ दिया इनके, तब तुम्हारा धर्म कहां था? जलाकर मारने का प्रयास किया, तब तुम्हारा धर्म कहां था? तो यह मित्रता नहीं है कि हर गलत कार्य में हम सहयोग दें और फिर कहें मैं मित्र हूं, वो गलत भी कर रहा है कोई बात नहीं, मैं उसका मित्र हूं। नहीं, भीष्म देव को कर्ण कहते हैं, जिस समय भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए, कर्ण कहते मैं जानता हूं हम सब मरने वाले हैं। भीष्म ने कहा कर्ण से कि देखो अब मेरी भी ये स्थिति हो गई है, तुम भी मारे जाओगे, सब मारे जाएंगे, बंद करो अब युद्ध। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो दुर्योधन बंद कर देगा युद्ध। अभी तक तो दुर्योधन मेरे लिए कर रहा था, और ये सत्य था, दुर्योधन कर्ण से ज्यादा भीष्म पर विश्वास करता था कि विजय मेरी भीष्म के कारण होगी। लेकिन जब भीष्म गिर गए तो स्वाभाविक था कर्ण के ऊपर, तो अगर तुम नहीं करोगे तो ये नहीं करेगा। कर्ण ने कहा मैं जानता हूं, मैंने स्वप्न देख लिया है, और उस स्वप्न में मैंने देखा है कि हम सब मारे जाएंगे, केवल 5 पांडव जीवित रहेंगे, ये मैंने देख लिया। तो फिर भीष्म ने कहा कि देख लिया तो बंद करो। बोले नहीं, मैं अपनी मित्रता को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये कैसी मित्रता है? अधर्म करने के लिए, मृत्यु के लिए, नाश के लिए सहयोग कर रहे हैं। सच्ची मित्रता भगवान करते हैं। तो इसलिए ऐसे मित्र थे, अगर हमें सबका मित्र बनना है तो हमें भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, तब हम सबके मित्र कहलाएंगे। सुहृद तब होंगे जब लोगों को कृष्ण के निकट लाएं, प्रचार करें भक्ति का, ये सच्ची मित्रता है। और ऐसे मित्र थे प्रहलाद महाराज, इसीलिए सबके सुहृद थे, और ऐसा मित्र हर भक्त को होना चाहिए। और ऐसी मित्रता या ऐसा, जैसे हम कह रहे थे कि परमात्मा बताते हैं लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं भगवान क्या चाहते हैं, हमें क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा? तो पता चलता है गुरु से। जब हम गुरु के अधीन रहते हैं, गुरु के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, तो सही गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। हम लोग उस अंधे व्यक्ति की तरह हैं जो एक बार गांव में आया, उसे किसी पते पर जाना था, अंधा था, पता तो था नहीं, तो वहां पर एक लड़का गाय चरा रहा था, तो उसने उससे पूछ लिया कि ये पता क्या जाना है, तुम्हें पता है? तो उन्होंने कहा ये जो गाय है ये उनकी है, ये सीधे उनके घर लेके जाएगी आपको। तो अंधे ने गाय की पूंछ पकड़ ली, और जैसे ही गाय की पूंछ पकड़ी, अब गाय तो पूंछ पकड़ने नहीं देती, गाय भागी, और इधर उधर उधर कांटों से यहां से गाय भागे, वो पकड़े हुआ है क्योंकि यही मुझे पहुंचाएगी। अब वो गाय भाग रही है इधर उधर उसको हटाने के लिए, तो घर पहुंचते पहुंचते पहुंच तो गया उस घर में, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते सारे कपड़े फट गए, खून निकलने लग गया, गंदगी लग गई, मिट्टी लग गई, गंदा हो गया। उस घर में पहुंचा तो वहां पर एक दरबान खड़ा था, तो उसने देखा, तो उसने देखा अरे ये नंगा आदमी, गंदा आदमी, ये क्या कर रहा है, इसे गाय को चोरी कर रहा है। उसको तो नहीं पता था कि क्या, उसने लिया डंडा मारना शुरू किया, धाड़ धाड़ धाड़। तो बड़ा अच्छा स्वागत हुआ जिस घर में जा रहा है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमने इस जगत में माया को पकड़ लिया है, माया की पूछ पकड़े हुए हैं कि यही हमें गंतव्य तक पहुंचाएगी। उससे अच्छा था कि वो किसी व्यक्ति को, क्योंकि खुद अंधा है तो किसी देखने वाले व्यक्ति के साथ में चला जाता। इसी तरह हमारे जीवन में अगर हम गुरु को स्वीकार कर लें तो हमें ऐसे मार नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो माया की बड़ी मार पड़ती। और इस उदाहरण से हम ये भी सीखते हैं कि अगर आप बिना गुरु के सही स्थान पर आ भी गए तो आपको पहचाना नहीं जाएगा, डंडे मारे जाएंगे, है ना? जैसे गाय की पूछ पकड़ कर वो पहुंच तो गए लेकिन बहुत डंडे मारे, भगा दिया वहां से। तो इसी तरह गुरु की जीवन में आवश्यकता है, जो हमें बतलाते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है। और ऐसे गुरु के आश्रय में रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से। आगे इनके गुणों में से वर्णन आएगा, गुरु शीश्वर भावना, तो उस समय और वर्णन करेंगे कि कैसे गुरु के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।